ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-450-2828-905-450-2828-2828।
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور جناب اس ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈ ہے نا، ٹھنڈ بھائی، آواز بھی تو فریز ہو سکتی ہے، نہیں کہتا تھا، اچھا تھا نا جو ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ شازیہ ملک صاحبہ گرما گرم خبریں لے کر آ گئی ہیں۔ آج بھی وہی خبریں ہوں گی جو میں نے آپ کو صبح سنا دی تھی، بتا دی تھی، لیکن بہرحال ظاہر آئی ریئلی ریسپیکٹ ہے رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی دیکھیں گے، نیوز تو صبح سے آپ سن رہے ہوں گے، لیکن جو ہوتی ہے ان کی زبانی، وہ امپورٹنٹ دیتا ہے نا، مطلب کیا سمجھے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں دیکھا، ایگری کر رہے ہیں لوگ، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے بتاؤں کس بات کا قلعہ ہے، آپ کم از کم پانچ تو کرتے ہیں، چار سے یہ مطلب یہ ریکویسٹ ہے، جو پانچواں کرے گا نا یقین کریں اس کو وہ اورنج والا وائٹ ٹوٹی جو واٹر کولر آتا تھا جس میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا برف ڈالنے کے بعد، وہ انعام میں ملے گا، لیکن چار سے پانچ کرتے ہیں، ریئلی ریکویسٹ، مطلب یہ میرے کم ہو جائے 27,000 کچھ میں سے ایک ان کو پاس، وہ میرا والا ہی چلا جائے، کچھ دن کے لیے چلا جائے، واٹر کولر لے کے واپس آ جائے۔ چلے جناب، ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ ہمارے شازیہ ملک پروگرام میں جڑ چکی ہیں، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ڈبلیو ایس میری بات سنو، آج یہ تم کیا یہ پاکستان کا جھنڈا بن کے آئے ہوئے ہو، گرین اور وائٹ کے کیا
پاکستان،
آج تو 14th August ہی نہیں ہے
میرا روز،
23rd وہ ہے مارچ ہے، ہاں تو تم نے یہ جھنڈا کیوں بنایا تم؟
بس دل ہے پاکستانی،
نہیں دل پاکستانی نہیں ہے، تمہیں کہیں لفافہ ہے کہیں سے؟
لفافے تو ہم بانٹتے ہیں،
اچھا
لینے والوں نے کہا ہے، اللہ نے کہا دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہمیشہ دعا یہ کہ اللہ دینے والا رکھنا،
ہاں تو مائک بھائی تو سارے لفافے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، ہمارے ہمیں تو کچھ نہیں دیتے، وہ
دینے والا ہی ہوتا ہے،
اچھا
کسی لیں گے تو کسی کو دیں گے نا،
وہ کسی کون ہے جس کو دیا،
وہ آپ کو پسند نہیں،
اس میں سے ہم کیوں،
آپ روزانہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں ان کے بارے میں،
اچھا اچھا اچھا،
آپ کو تو کراچی جنہ انٹرنیشنل رپورٹ اترا نہیں ہوتا، آپ کو فیڈرل اتر جائیں گی، ہمیں تو جنہ انٹرنیشنل رپورٹ
تو جنہ کے پاس ہی تو پنڈی ہے، جنہ انٹرنیشنل کے تو ساتھ ہی پنڈی لگتا ہے،
دیکھیں آئی ریئلی ریسپیکٹ ایوری بڈی،
اچھا
میں کینٹ میں رہتا ہوں، سمجھا کریں نا مسائل، مطلب آپ،
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں تمہارے مسئلے ہیں کیونکہ تم نے کینٹ میں رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کینٹ میں بھی،
آئی لو کینٹ، آئی لو کراچی، آئی لو کینٹ، آئی لو پاکستان، آئی لو مائی آرمی،
جی جی، آج موٹا لفافہ ہے،
ہم دیتے ہیں،
لے کے دیتے ہیں اور پھر سازش کرواتے ہیں،
اللہ بس کرو، چلیں جی بالکل، دیکھیں یہ جرنلسٹ کا مسئلہ یہی ہے، یہ نہ ایک الفاظ سے دوسرا الفاظ بنا لیں گی، ایک دن کا جوک آپ کو سناؤں، یہ جوک ہے، مطلب ایک دن کھانا آیا ٹیبل پہ، اس پہ ایک باکس میں سیلڈ رکھا ہوا، ایک باکس میں گرم گرم دال، جرنلسٹ نے اس کی سٹوری بنائی، ہائے سیلڈ بھی گرم کر دیا، اب میں بھی چیک تو کروں سیلڈ کا، وہ الگ آیا،
اسی لیے
اور ابھی کیس چلنے والا ہے پیزا لا،
اور تم پہ سب سے تگڑا چلے گا، تم 10 سال کے لیے جیل جاؤ گے،
آئی وش میں چلا جاؤں، چھٹی ہو جائے میری،
دال روٹی اچھی ملے گی تمہیں،
وہ ریلی دال روٹی، دیکھیں اپنوں کے پاس جا چلا جاؤں گا، اپنے زیادہ
यानी तुम्हारे एम्स कितने बड़े हैं जिंदगी
में। मैं लंबा सोचता हूँ ना, मैंने कहा देखो एक वो भी लंबा सोच रहा हूँ, जन्नत का ये भी लंबा है। तो देखें सम टाइम लोगों को बचाने के लिए जो है वो आपको जो है देखें जैसे फर्ज कर ले आपकी जान को खतरा, सबसे बेस्ट काम क्या है, आप अरेस्ट हो गए।
अच्छा
बस
गवर्नमेंट की कस्टडी में
जिंदगी सुकून आपकी। अच्छा, तो मेरे भी कोई 10-5 साल जिंदगी आराम से गुजर जाएगी।
अच्छा,
VIP फार्म हाउस होगा वहाँ पर जो है घोड़े छोड़े ये वो माहौल।
तो तुमने उनके घोड़े जाके धुलाने
हमारे लिए होंगे।
अच्छा अच्छा,
आज काले वाले पे आज ब्राउन वाले पे।
अगर किसी ने तुम्हें चढ़ने दिया तो
हम दूसरों को चढ़ा देंगे,
तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला नहीं है।
नहीं, हम करने वालों में
तो मसले क्रिएट करने वालों में।
एक होता है टूल और एक होता है टूल मेकर।
अच्छा,
तो मैं आप समझ सकती होंगी।
और एक होता है रूल मेकर। वो जो रूल मेकर होता है ना वो भी तुम्हारे जैसे टूल मेकर को जो है ना वो बस टूल ही बना के रख लेता है, उसको चलने नहीं देता।
ये तो जुल्म हो जाए।
जुल्म होएगा ना, इसलिए जहाँ बैठे हो वहीं पे चैने बैठो।
तकरीबन एक आध साल के अंदर जाना होता है।
हाँ,
तो प्लीज
अब तो तुम कोई पता नहीं 4-5 साल के बाद गए।
1947 में गया था उसके बाद आप गए हो।
अब गए हो, यस।
तो अभी अगली फिर आएगी 1947 तो हाँ,
चलो बस ठीक है,
ठीक हो गया। ओके, तो खबरें सुना दें।
जंगों से पहले जाते रहा करो, ठीक है।
अब तो जंगें खत्म हो रही है ना।
हाँ ठीक है,
तो खत्म हो रही है। अब आसान अब तो थोड़ा
हाँ, जैसे ही ट्रंप साहब के जाने का टाइम होगा ना तुम एक चक्कर लगाना, क्योंकि फिर जंगें शुरू हो जाएंगी। एक चक्कर जरूर लगा लेना उसके 4 साल खत्म होने से पहले, ठीक है।
आपने सही कहा,
चलो
डन हो गए।
ओके 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 जी जनाब, ओके ओके जनाब। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान भाई वहां पे होते हैं, जबरदस्त आपको बंडल डील्स देते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो और बहुत अच्छे से आप उनके डील्स ले सकते हो और बहुत अच्छे कलर्स की अप्लायंसेज आप ला सकते हो जो मैच कर जाएं आपके जो है रेस्ट ऑफ द फर्नीचर उसके साथ भी। शैंपेन कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू, ब्लैक, जो भी आपको चाहिए है आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मजे का खाना खाना है, मेरी तरह का सेहत बनाना है आपको, तो फिर आपको फैसल चटा साहब के 2 रेस्टोरेंट्स जो है उस पर आपको जाना है। एक है ब्रैम्पटन, नहीं, मिसिसागा में है और एक है ओकविल में। तो आप जाइए विलेज डेज, जबरदस्त खाने होते हैं ऑथेंटिक कुक्स के बनाए हुए, तो आपको एंजॉय का मजा ले वहां जाके, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके। फिर हमारे हैं नासिर शाह साहब। नासिर शाह साहब कहते हैं कोई भी आपको मोर्टगेज चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करो, तो नासिर शाह के पास जाएं। उनका एक रेस्टोरेंट भी है ओपन माइक कैफे, वहां पे भी जाके आप खा सकते हैं बहुत मजे के खाने, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जो खाने हम बनाते हैं वो और कोई नहीं बनाता, तो मतलब आजमाइश शर्त होता है ना, तो आपको जाके आजमाइश करना पड़ेगा वहां पे। और ना फटने वाले कपड़े किधर मिलते हैं, वन एंड ओनली स्पीयर एंड मके, वहां पे आप जाओ। नई लोकेशन पे आगे हैं ब्रिटानिया रोड पे, वहां आप जाएं, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, तो बस एक दफा रो लो, अच्छे कपड़े ले लो इटालियन वूल के, फटेंगे ही नहीं, साला साल चलेंगे, ठीक है जी। और आपको भी मजा आएगा, जब जब पहनोगे लोग आपसे पूछेंगे कि आपको ये अच्छे कपड़े किधर से आए। QTL क्विक ट्रक ल्यूब, जबरदस्त किस्म की ट्रक की सर्विसेज देते हैं, आप उनके पास जाओ प्लीज। आप अच्छा जो है उसमें अपने ट्रक में ऑयल डलवाओ, क्योंकि 2 नंबर अगर आपने ऑयल डलवाया तो आपके इंजन का जो ट्रक का इंजन है वो सीज भी हो सकता है, खराब हो सकता है जल्दी। तो आप नेपनी की लोकेशन पे जाओ, एक तरफ से एंटर हो, 15 मिनट में वो सारा आपका जो है वो देख लेते हैं इंजन आपके ट्रक का, और फिर दूसरी तरफ से आप निकल के जा सकते हैं। अदनान अलवी साहब बहुत जबरदस्त किस्म की सुविधाएं देते हैं, हर तरह के इन्वेस्टमेंट, RESP, RRSP, आप उनके पास जाएं। लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो आप उनके पास अगर आपको ये सब सर्विसेज चाहिए तो जाएं। एंड जनाब हमारी वन एंड ओनली नाजिया रहमान डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे पे होती हैं, नया डेंटिस्ट ऑफिस उन्होंने खोला है, जैसे भी आपको सर्विसेज है आप जाएं। एंड जनाब पायल ज्वेलर्स, कोई भी आपका मसला है यानी कि घर में फैमिली में कोई ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशंस हैं, तो आप ज्वेलरी आपको चाहिए तो आप असलम भाई के पास जाओ, ठीक है। ओके जनाब, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें जी कि आज जो थे वो कहां पे थे सारे जो हमारे ओंटेरियो के लीडर्स हैं। बॉनी क्रॉम्बी जो हैं वो बार बार जो हैं वही जो कल की डिबेट में भी कह रही थी कि भई हमको एनडीपी के जो वोटर्स हैं वो मुझे वोट करें, और जो है उसकी वजह यह है कि हम आपके जो है मसले हल करेंगे। वो कहते हैं जी कि मेरी हेल्प करो ताकि हम पीसी की गवर्नमेंट को टॉपल कर सकें। उन्होंने कहा जी कि डग फोर्ट का जो अल्टरनेटिव है वो मैं ही हूं। आज वो मिल रही थी स्मॉल बिजनेस के लोगों से। एनडीपी की मार्ट स्टाइल्स जो थी वो कह रही थी कि लिबरल गवर्नमेंट का बस एक ही जो है वो अब एम रह गया कि उसको ऑफिशियल पार्टी स्टेटस मिल जाए। वो क्या होता है ना कि ऑफिशियल पार्टी स्टेटस मिल जाए तो आप डिस्कशन में, डिबेट्स में, हर चीज में आप हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप नहीं है तो फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इस वक्त जो है 9 जो जब ये डिजोल्व हुई थी असेंबली ऑन्टेरियो की तो उसमें 9 इनके सीट्स थे, लेकिन आपके पास 12 सीट होना जरूरी है अगर आप इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन्होंने आज अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात की और कुछ परफॉर्मेंसेज ये इवनिंग में देखेंगी। फोर्ड साहब जो थे वो सूट्स से मरी जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पियर्सन का हाल आपको पता ही है, वेदर खराब है, तो उन्होंने अपना कैंसिल किया। और श्नाइडर साहब जो थे वो भी एक मीट एंड ग्रीट करने वाले थे अपने जो लोकल कैंडिडेट जोएल लॉगहेड जो है उसके साथ, लेकिन वेदर के खराब होने की वजह से वो सब अपने सपोर्टर्स के साथ जुड़े वर्चुअली ही। कल जनाब हुए थे बड़े फायरवर्क्स। जो डिबेट हुई थी सेकंड, उसके अंदर चारों ही मौजूद थे, डकफोर्ड, बॉनी क्रॉम्बी, मैरी स्टाइल्स, ग्रीन पार्टी के माइक श्राइनर, इन सब ने 90 मिनट का यह डिबेट था जिसमें पार्टिसिपेट किया और अपना बेस्ट कहा कि जी मैं आपका अगर हेड, यानी कि मैं अगर ऑन्टेरियो का चीफ एग्जीक्यूटिव या मैं ऑन्टेरियो का प्रीमियर बनूंगा तो मैं आपके सब मसले हल करूंगा। जो मसले इसमें डिस्कस किए थे, अफोर्डेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्राइम, ये सब चीजें, फोर्ड साहब ने कहा कि सिर्फ मैं जो है ये यूएस के जो टैरिफ का थ्रेट है इसको मैं फाइट कर सकता हूं। क्रॉम्बी ने कहा कि जो कल जो आज भी उन्होंने बात की एनडीपी के वोटर्स को कहा कि भाई मुझे वोट दो अगर आप चाहते हो कि मैं फोर्ड साहब को हटाऊं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो मैरिट स्टाइल्स थी वो कह रही थी कि लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग चूंकि बहुत बड़ा हो गया है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है और ऑन्टेरियो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। और फिर उन्होंने फोर्ड साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराज किया कि ये जो टैरिफ्स है उसके लिए कुछ ये खास बात नहीं कर रहे। हालांकि सबसे ज्यादा बात तो डक फोर्ड साहब ही कर रहे हैं। श्राइन साहब जो है उन्होंने कहा जी कि मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट, मैं लोगों के लिए फाइट करूंगा, हम आपके जो है मसले समझते हैं अच्छे। और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो एमपीपीज होंगे वो पार्टी के लिए फाइट नहीं करेंगे, वो अपने इलेक्टोरल्स के लिए फाइट करेंगे, तो आप हमको वोट दें। कल हमने आपको बताया था कि जो डेल्टा एयरलाइंस का जो प्लेन था पियर्सन के ऊपर जो स्किड जिसने किया उल्टा हो गया और आग लग गई उसको, तो उसमें 80 लोग जो थे वो थे ऑन बोर्ड थे। और टॉर्मिक जो है पियर्सन एयरपोर्ट का उसके ऊपर जो है ये स्किड करके उल्टा होके आग लगा था इसको। तो आज ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर 18 लोगों को कुछ चोट तो आया है लेकिन इतना कोई लाइफ थ्रेटनिंग लग नहीं रहा है। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर एक बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत पड़ेगी। दो जो रनवेज हैं वो बंद रहेंगे, रेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट जो है वो खोल दिया गया है। कैनेडा ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जो है उसने कहा जी कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। लेकिन जिस वक्त ये प्लेन लैंड कर रहा था 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है उस वक्त विंड चल रही थी और फिर क्रॉस विंड भी जो है वो उस वक्त चल रही थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जी पायलट्स जो है उनको इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है और जो उनका ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो उनको बता रहा होता है कि क्या कंडीशन है, क्या वेदर है, कैसे आप लैंड कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स है आपके पास, आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं और जब लैंड करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा ने कहा कि जी हमारा जो फ्लाइट था 4819 ये ऑपरेट कर रहा था एंडेवर एयर की तरफ से विद द सी और जे 900 एयरक्राफ्ट जिसको लॉन्च किया था 2001 में बॉम्बार्डियर ने। और इनका अगर एक्सीडेंट कैटलॉग अगर आप लेके देखेंगे एविएशन सेफ्टी नेटवर्क से तो आपको पता चलेगा कि इनके जो 2005 में ओवर 100 एक्सीडेंट्स जो भी हुए थे उसमें जीरो कैजुअल्टीज है, यानी कि तैयारे का बॉडी जो है वो इतना जबरदस्त बनाया हुआ है कि ये स्किड करे, उल्टा हो जाए, उसमें आग लग जाए, कोई डेथ्स नहीं ऐसा चाहता है, कोई इतना बड़ा मेजर कैजुअल्टीज नहीं आता है जैसे कि दूसरे जैसे जहाजों में होता है ना कि उनके परखचे उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो जहाज है बॉम्बार्डियर का बहुत ही रिलायबल है और एक्सपर्ट का कहना है जी कि ये एक अमेजिंग एयरक्राफ्ट है, तो इसीलिए जनाब लोगों की जान जो है वो बच गई। आज क्रिया ने कहा कि जो होम सेल्स है वो जनवरी के अंदर ऊपर गए थे 2.9% से कंपेयर टू 2024, लेकिन फिर एंड ऑफ द मंथ में ये बिल्कुल नीचे आ गए थे। ये ड्रॉप जो है ये डेफिनेटली उस वजह से है जो ये जो हमारी ट्रेड की अनसर्टेनिटी चल रही है यूएस के साथ, उसकी वजह से है. और प्रॉपर्टीज जो है वो जंप किए थे 11% मंथ ऑन मंथ, विच वॉज द लार्जेस्ट सीजनली एडजस्टेड मंथली इंक्रीज इन न्यू सप्लाई ऑन रिकॉर्ड गोइंग बैक टू लेट 1980s. एवरेज होम का जो प्राइस था 670,000 से थोड़ा ऊपर था इन जनवरी, अप 1.1% फ्रॉम जैन 2024. एरियाज जो है नॉर्थ और साउथ वेस्टर्न ट्रोनो की तरफ से के तरफ, वो वहां पे आज भी सीवियर किस्म का वेदर कंडीशन रहेगा. एनवायरमेंट कनाडा ने फिर से एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग जो है वो इश्यू किया है, जिसमें कि विंड चिल्स जो है अराउंड -30 degrees रहेगे. नॉर्थ ऑफ ऑन्टेरियो में स्नो क्वेल्स जो है उसका भी वार्निंग दिया गया है, और आपके कम्युनिटीज में 15-70% स्नो आ सकता है. नोवा स्कोशिया जो है वहां पे विंड चलेंगी 90 km/h से, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहेगा. और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का वार्निंग जो है वो सस्कैचुअन, मच ऑफ अल्बर्टा और मैनिटोबा में भी दिया गया है. विंड चिल के साथ आज आपको वहां पे -40 degrees फील होएगा, और चीजें जो हैं और भी ज्यादा ठंडी हो जाएंगी आने वाले दिनों में सस्कैचुअन और मैनिटोबा में. तो यानी कि ये ठंड का स्पेल बिल्कुल किसी सूरत कम नहीं हो रहा है. आप सोचेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक से ये शुरू होया हुआ है, -25 से चलता जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है. कनाडा का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो भी थोड़ा ऊपर गया है जनवरी में 1.9% से, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा. और ये वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट का जो वन मंथ टैक्स ब्रेक दिया था उसका कुछ फायदा इसलिए नहीं हुआ कि गैस का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, और गैस का प्राइसेस जंप किया 8.6% ईयर ऑन ईयर. नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ऊपर गए 4.8% एनुअली से इन जनवरी, और क्योंकि इसमें जो डिमांड थी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पेट्रोल की ऑन्टेरियो और क्यूबेक के अंदर. और ये जो था, हालांकि आपको पता ही है कि 2024 में ओवर सप्लाई इसका रहा, और आप उसकी वजह यही है कि जाहिर है कि अब इतना जो सीवियर वेदर चल रहा है उसमें आप गाड़ियों को रन भी कर रहे हैं जरा 10-10 मिनट के लिए स्टार्ट करने में और इस तरह, तो इसलिए वो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं ऊपर गई हैं. पोप फ्रांसिस जो हैं उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन आ गया है, और इसीलिए कहा गया है कि वो अभी जो है इस कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल जो है कंडीशन के रहते हुए हॉस्पिटल में और ज्यादा रहेंगे. वेटिकन के स्पोक्सपर्सन मैटियो ब्रूनी ने आज कहा है कि पोप साहब को हो गया है पॉलीमाइक्रोबियल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसलिए इनका ड्रग थेरेपी जो है वो थोड़ा चेंज करने वाला है. ये कब तक अब हॉस्पिटल में रहेंगे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन 2023 में भी ये निमोनिया के लिए हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन वेटिकन का कहना है कि पोप इज इन गुड स्पिरिट्स, सो इतना वो यानी कि खराब हेल्थ नहीं है, बस थोड़ा हॉस्पिटल में रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए. इसराइल जो है उसने आज टेंडर जो है वो डाला है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,000 मोर सेटलर होम्स इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक. इसके ऊपर जाहिर है कि बड़ा शोर मचा है. ये डिटेल्स अपनी इनकी इसराइल की एक एनजीओ है पीस नाउ, उसने ये दिया. उन्होंने कहा जी कि 974 न्यू हाउसेस को तो इमीडिएटली बनने के लिए प्लान कर दिया गया है इफ्रत सेटलमेंट में नियर जेरूसलम, और ये एक्सपैंड कर रहे हैं अब इस सेटलमेंट को विच इज 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जेरूसलम, और इसमें 40% फर्दर ब्लॉक डेवलपमेंट जो है वो बनाई जाएगी पैलेस्टीनियन सिटी ऑफ बेथलेहम में. नेतन्याहू साहब का मीनवाइल कहना है कि जो यूएस का प्रपोजल है टू टेक ओवर गाजा एंड आउस्ट पैलेस्टीनियंस, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, जिसको कि जाहिर है कि बड़े बुरे तरीके से जो है वो बात की गई है. इसके अंदर एक एक्सपर्ट जो है उसने कहा है कि नेतन्याहू साहब का ये जो मेंटेलिटी है इसको अगर आपने स्टडी करना है तो ये एक बुक आई थी ऑन टेररिज्म, उसके अंदर इसने लिखा था कि 7 countries जो दुनिया के या 6 countries दुनिया के जो हैं उनको बिल्कुल ये खत्म कर देना चाहते हैं, तो उसमें से एक पैलेस्टाइन है, फिर सीरिया है, इराक है, सूडान है, ईरान है, तो ये इस तरह के जो है 6 countries को, इराक है, लीबिया है, इन 6 countries को ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, तो ये इनका मेंटेलिटी शो करता है. तो उसी मेंटेलिटी के अंडर ये जो है पैलेस्टाइन के ऊपर पूरे पे भी कब्जा करना चाहते हैं और खत्म कर देना चाहते हैं, पैलेस्टाइन को पूरा इसराइल बनाना चाहते हैं. जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि यूएस और रशियन ऑफिशियल्स जो है उनका मुलाकात एक रियाद में होना है. बोथ क्रेमलिन एंड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बोला था. तो आज उनके मुलाकातें जो हैं रियाद के अंदर हुए हैं, और इसमें बातचीत जो है यही रही है कि ये जो यूक्रेन के अंदर 3 साल से वॉर चल रहा है इसको खत्म करने की जरूरत है. 2 different जो सोर्सेज हैं उन्होंने मीडिया के साथ बात की है. क्रेमलिन के जो फॉरेन जो अफेयर्स के एडवाइजर हैं यूरी उशाकोव, उन्होंने आज कहा है कि ये बातचीत यूएस के साथ जो है बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स तय किए हैं कि किस किस चीज के ऊपर हमको बात करने की जरूरत है, हीट जनरेट जो हो गई है उसको कम करने की जरूरत है और कॉन्स्टेंटली हमको इनको इन टच रहने की जरूरत है और यूक्रेन में वॉर को खत्म करने की जरूरत है। यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशिया के फॉरन मिनिस्टर जो है सर्जे लेवरोव और बहुत सारे सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जो कि हुई थी रियाद के दीरिया पैलेस के अंदर। और लेकिन इसके अंदर जैसे कि हमने आपको कल बताया था, कल तो यूएस की स्टेटमेंट और थी कि हम यूक्रेन को इसमें जो है वो बिल्कुल इन टॉक्स में बिठाएंगे, आज उन्होंने यूक्रेन को भी नहीं बिठाया और कल ही उन्होंने वैसे कह दिया था कि यूरोपियन यूनियन का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने यूरोपियन यूनियन से पूछे बगैर ही पुतिन साहब को फोन भी कर दिया था। तो यूरोप जो है वो बहुत भड़का हुआ है इस चीज के ऊपर कि हमसे पूछे बगैर जो है वो कैसे किया। अच्छा, अब जो ये नतन्याहू साहब का प्लान है कि अफ्रीका में भी हमको दो तीन कंट्रीज को खत्म करना है, लीबिया को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, अब क्या हो रहा है कि अब सूडान के पीछे पड़े हुए हैं और कॉन्स्टेंटली वहां पे जो है फाइट है, जमजम का एक वहां पे जो कैंप है जहां पे कि थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड लोग रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग फाइटिंग, अब इनको एलिजली कौन सपोर्ट कर रहा है वो अब आप खुद ही समझिए। लेकिन भारत सूडान का जो डारफोर रीजन है उसमें जो है अप्रैल 2023 से वॉर शुरू हुआ है और बिटवीन आर्मी एंड आरएसएफ, और यहां पे तकरीबन इस कैंप के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन अब रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और फैमिन जो है यहां पे आता, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है वो भूख नंग आता जा रहा है यहां से, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जो जिसका कि असेसमेंट दिया है। 2 डेकेड से आरएसएफ जो है वो फाइट कर रही है यहां पे डारफोर में, पैरामिलिट्री जो है वो भी असॉल्ट कर रही है अब जमजम के इस कैंप के ऊपर। यहां पे आज की जो एरियल फोटोज आए हैं उसमें इस कैंप की जो मेन मार्केट थी उसको आग लगाई गई और बहुत ही हैवी जो है डैमेज किया गया है एंटायर बिल्डिंग्स को और बिल्कुल पूरी पूरी बिल्डिंग को रेज कर दिया गया है। इसके साथ साथ रुवांडा बैक जो रेबल्स कांगो के अंदर भी हैं वो भी बहुत ज्यादा अब लड़ाई कर रहे हैं, उनका आज उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ग्रिप कर लिया है बुकुवा के ऊपर अंडर M23 कंट्रोल और कंट्री के ईस्ट में, और उन्होंने कहा जी कि हमने इसलिए किया है कि जो कांगो की जो फोर्सेज थे वो इस इलाके को अबेंडन करके चले गए थे। तो ये अफ्रीका में भी बे इंतहा मारामारी जो है अब चल रही है और हालत काफी खराब है। कतर जो है जी उसने कहा है कि वो इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसका ट्रेड जो है अभी 14 बिलियन यूएस डॉलर्स एनुअली है, लेकिन इसको 5 साल में वो डबल करना चाहते हैं, यानी कि 28 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करना चाहते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि कतर के अमीर जो है शेख तमीम बिन हमद अल थानी वो इंडिया गए हुए हैं, इसके अलावा जो इनका एक इन्वेस्टमेंट आर्म है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इन जो है वो इंडिया। इसके साथ साथ यूएई ने भी आज कहा है कि हम इंडिया के साथ जो है ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं एट द ट्यून ऑफ 21.35% टू 80.51 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि अभी इनका फिस्कल ईयर था अप्रैल जनवरी दिस ईयर तक उसका ये फिगर है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएई के साथ इट रोज टू 6.82% टू 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर, और इम्पोर्ट्स जो है उनका राइज किया है 35.58% टू 50.51 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अरब कंट्रीज अब दबादब जी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वो नहीं वो आपका एक वो आ गया था वो सेंट्री बीच जेंट्री बीच टाइप खुद की पता नहीं 500-600 कोई मिलियन की कोई वर्थ है और आपको कहानी सुना के गया, या आपने खुद ही कहानी बना ली कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो कतर और यूएई कर रहा है, 50 बिलियन, आप सोचो जरा 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जो ये लोग कर रहे हैं अरब्स इंडिया के अंदर। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पाकिस्तान में उन्होंने 30 टेररिस्टों को मारा है इन इंटेल बेस्ड ऑपरेशन इन साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, ISPR ने याद कहा। उन्होंने कहा जी कि ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जनरल एरिया ऑफ सारा रोगा के अंदर, और यहां पे हमको पता चला था कि खवारिज जो है वो अब मतलब टेररिस्टों के बजाय ये एक और वर्ड जो है कॉइन कर लिया खवारिज, भाई टेररिस्ट बोलो सीधा सीधा खवारिज पता नहीं लोगों को भी खवार किया हुआ है और ये ड्रामे भी बनाए हुए हैं। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि मोबाइल पुलिस जो थी उसको टारगेट किया गया था हैंड ग्रेनेड से बाय दीज टेररिस्ट इन कोहाट्स शादीपुर एरिया, इसके अंदर एक जो कॉप है वो इंजर हुआ था और एक जो टेररिस्ट है वो मारा गया है और बहुत सारे मिलिटेंट्स जो है उनको यहां पर अरेस्ट भी किया है। इमरान खान ने आज एक दफा फिर से कहा रहा है कि मैं गवर्नमेंट के साथ ना कोई बैक चैनल पर डिस्कशन कर रहा हूं, ना ही मैं कोई डील बना रहा हूं, नो मैटर कितना मेरे पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, मैं नहीं झुकूंगा और मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। ये बात आज उनकी बहन अलीमा खान ने रिपोर्टर्स को बताई, क्योंकि कुछ बातें ऐसे आ रही थी मीडिया में कि जैसे बैक चैनल टॉक्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं और केपी के चीफ मिनिस्टर अली मोइन गंडापुर इसके अंदर बहुत की रोल कर रहे हैं और अपना कनेक्शन यूज कर रहे हैं इनके बीच में डायलॉग कराने के लिए। अडियाला जेल से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि ये जेल के रूल्स और कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रखते हैं ये लोग, और मेरी गाड़ी को 2 किलोमीटर रोक देते हैं पहले और मुझे चल के आना पड़ता है, और इसके लॉयर्स जो है खान के उनको भी रोक दिया जाता है। मैं भाई से मिलने के लिए आती हूं, 50-50 मिनट मुझे बिठाया जाता है, लेकिन फिर भी वो फिट है और हेल्दी है। ये जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स है कि उसका हेल्थ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने कहा कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा हुआ है। इसके साथ साथ पीटीआई के जो लीडर हैं असद उमर, उसने कहा है कि पॉलिटिशियंस को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा और इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब है इन लोगों को पता नहीं मरना क्यों याद नहीं होता। आसिफ मुनीर साहब जो है पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इनको लगता है ये शाह ईरान से ऊपर है, जुल्फकार अली भुट्टो से ऊपर है, जो फैरोज थे उनसे ऊपर है, ये बहुत ही कोई बड़ी अजीम कोई चीज है, कोई खुदा का कोई, वो कहते हैं ना वो हिंदू कहते हैं कि जो है भगवान का अवतार, भगवान का अवतार अपने आप को समझते हैं। इनको लगता है कि सारी जिंदगी मैं और 50 साल जो है ऐसे ही मैं रौनक से मैं रहूंगा। ये जो चीजें होती है ना तकब्बर, तकब्बर के लिए ना सिर्फ आप तो बहुत बड़े मुसलमान भी हैं और आप बड़े हाफिज कुरान भी हैं, इस्लाम में तो इसकी बुराई है और दूसरे रिलीजन्स में भी इसके लिए तकब्बर जो है ना उसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो आप जरा अपने दिमाग को नीचे लाओ। आप कोई मतलब है दुनिया के अमीर तरीन या खूबसूरत तरीन या जो है इन्फ्लुएंशियल तरीन कोई आदमी नहीं हो। आप ये जुल्म जोर जबरदस्ती पाकिस्तानियों गरीबों के ऊपर ही कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा सा अल्लाह से डर लो आप, अगर आपने कुरान वाकई पढ़ा है तो। वैसे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि पढ़ा होता तो आप जरूर उससे कुछ आप हासिल कर लेते। तो मुझे लगता है बस वो रटू तोते की तरह अरबी में पढ़ लिया आपने और तर्जमा वर्जमा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि रसूल की जिंदगी क्या थी, कुरान में क्या टॉलरेंस लव कंपैशन वो शायद आपको सिखाया नहीं गया। बीबी सरदारी साहब जो है जी वो एक और ही कुछ कहानी लेके चले हुए हैं। वो जनाब म्यूनिख में पहुंचे हुए हैं, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें पहुंचे। अभी बीबी सरदारी से पूछो कि भाईजान आप शायद पीडीएम 1 के जमाने में रह रहे हो, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आप नहीं हो, आप किस कैपेसिटी में वहां पे पहुंचे हुए हो, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को पाकिस्तान को, किस कैपेसिटी में पहुंचे? क्योंकि जो ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें तो आप अपने पर्सनल जो है वो एजेंडे पे नहीं जा सकते ना, तो आपका क्या एजेंडा है? भरल जी वहां पे ये पहुंचे हुए थे म्यूनिख में जर्मनी में और वहां पे बहुत सारे जो है टीवी के इंटरव्यूज जो है वो कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफें की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक ब्रिज बना सकता है यूएस और चाइना के बीच में। वो तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं ट्रंप साहब शी साहब के साथ, तो अभी आप क्या ब्रिज बनाओगे भाईजान? तो बहरहाल जी बीबी जरदारी को लगता है कि शायद वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा जी हम तो ये सिचुएशन जो है इसका बड़ा फायदा ले सकते हैं ये लोग बाकी की दुनिया हमसे, और हम तो ब्रिज बनाएंगे। और उन्होंने ये भी ऑप्टिमिज्म शो किया कि हम इंडिया के साथ भी थोड़ा ताल्लुकात हमारा अच्छा हो जाएगा और हम थोड़ा टॉक्स उनके साथ शुरू करेंगे। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब, उन्होंने आज फिर से बेतहाशा इतराज किया जी इमरान खान साहब के ऊपर कि ओ बड़े ये लेटर्स लिख रहा है जी आसिफ मुनीर को, इसलिए कि वो हाथ जोड़ रहा है आसिफ मुनीर के आगे कि अब मुझे जो है वो बचाओ। और उन्होंने कहा जी कि अडियाला जेल से खाली अब बैड न्यूज आ रही है, बाकी पाकिस्तान से बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है। आज नारोवाल में ये जो है वो गैदरिंग से बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि ये बेतहाशा करप्शन चला रहे थे इमरान खान के जमाने में बुशरा बीबी और फराग गोगी, और जो है बट ग्रेस ऑफ गॉड ये अब तो ले गया था डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को, लेकिन हम अब मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं और सिचुएशन इसने इतनी खराब कर दी थी ताकि पीएमएलएन इसको हैंडल न कर सको। कौन सा पीएमएलएन, कौन सा आप जीते हो, मतलब है क्या ड्रामे मचाए हुए, कितना बेवकूफ बनाओगे भी लोगों को? तो जी कि ये पीएमएल वाले इसको हैंडल ना कर सके, और आपको तो गवर्नमेंट ही नहीं मिली, आपने तो चीनी है, तो आपके लिए क्या सिचुएशन बना रहे थे वो? बहरहाल एनीवेज, तो वो अब कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था इमरान खान के जमाने में और हमारे जो फ्रेंडली नेशन के साथ दोस्तियां थी वो भी खराब हुए थे, तो अब हम ठीक कर रहे हैं। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज हैं जस्टिस नईम अख्तर अवान अफगान, वो तो माशाल्लाह से वो भी पता नहीं किस दुनिया में है, वो तो अब कुछ और ही वो भी बोली बोल रहे, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोल रहे हैं। वो आज सुन रहे थे एक हियरिंग इंट्रा कोर्ट अपील जिसमें कहा गया था कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता है मिलिटरी कोर्ट के अंदर, एंड दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल। लॉयर सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने कहा जी कि ये चीज अगर आप करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविलियंस जो है उसको वायलेट करता है और इंटरनेशनल जो लॉ है उसका कॉन्ट्राडिक्शन ये है। ये ओपन में इसीलिए होते हैं सारे इस तरह के ट्रायल्स ताकि एक इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंट जो है प्रोसीडिंग्स को चलाया जा सके। उन्होंने साइट किया यूरोपियन यूनियन के कोर्ट्स का, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे कंट्रीज जो है उनको इन्होंने बहुत सख्ती से कहा था यूरोप में कि आप अपना मिलिटरी ट्रायल का प्रोसेस जो है उसको आप ठीक करो। तो अगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब ठीक नहीं किया जाता है तो फिर ये ट्रायल्स जो है ये फेयर नहीं होते हैं। उन्होंने ये हवाला दिया आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ हमको फेयर ट्रायल्स चलाना चाहिए। जस्टिस अफगान ने कहा जी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा जी, पता नहीं तुहानू की एक्सप्लेनेशन, तुम किसनू कहते हो भाई जान। इंडिया जो है वो बहुत अरसे से जनाब ये सारी दुनिया के अंदर फैला रहा था कि बासमती राइस सिर्फ उनका है, पाकिस्तान का कुछ इसमें लेना देना नहीं है। आज उनको बहुत बड़ा ब्लो मिला क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने उनको ये रिकग्नाइज करने से ना बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान को बिलोंग करती है और हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। इंडिया ने बहुत पुश किया कि बासमती राइस जो है उसका एक जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट्स में ले लेके ये बिल्कुल यूनिकली इंडियन प्रोडक्ट है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना सारा मुद्दा पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त यूनाइटेड इंडिया था तो ये दोनों की शेयर्ड हेरिटेज थी और 2024 का ये जो इनका मुद्दा ये जो लेकर गए थे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया वाले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसके ऊपर यूरोपियन जो कोर्ट थी उसने रिजेक्ट किया था इंडिया का एप्लीकेशन क्योंकि पाकिस्तान ने सारा कल्चरल हेरिटेज जो था उसका वो हिस्ट्री ट्रेस करके कोर्ट को दी थी। मोदी जी जो है जी अब उन्होंने चूंकि यूनिलैटरली अपॉइंट कर दिया है गणेश कुमार साहब को एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसके ऊपर बहुत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसा तो कभी हमारे इस तरह हुआ ही नहीं है, जब भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बनाया जाता है तो उसमें एग्जीक्यूटिव अपना सोल नहीं ले सकती है क्योंकि इसको इस बॉडी को इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है, इसको गवर्नमेंट का ऑर्गन या माउथ ऑर्गन नहीं बनाया जा सकता है, माउथपीस नहीं बनाया जा सकता है, तो आप ये सिलेक्शन जो है इसको रोको। लेकिन मोदी जी उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम खली वली हमारे भी मुल्क कल पाकिस्तान से असल में ना बहुत इंप्रेस हो गए ये लोग, वो कहते हैं खली वली सारे लॉज, जो मैं बोलूंगा वही लॉ है। दिल्ली रेलवे के ऊपर जी बहुत ज्यादा स्टैम्पीड एक्ट जो हुआ था जिसके अंदर 18 लोगों का डेथ हो गया था इंक्लूडिंग 5 किड्स, तो उसके ऊपर सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर मचाया था। दिल्ली पुलिस ने कहा जी कि हम बहुत सारा मेजर्स जो है इसको लेके आ रहे हैं ताकि पैसेंजर्स का रश ना रहे और इस तरह के और ना इंसिडेंट्स हुए। बैरिकेड्स वहां पर उन्होंने लगाए हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग जो है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है, बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और ये जो बिला वजह के फुटब्रिज के ऊपर जो लोग बस घूमते फिरते रहते थे एवं यारी दोस्ती में, उनको भी कहा कि अब आप बिल्कुल यहां पर नजर ना हो, अनलेस एंड अंटिल आपके पास वैलिड टिकट है आप ये इन प्लेटफॉर्म्स और ब्रिजेस पे नजर मत आना। मीडिया के अंदर बहुत दिनों से रिपोर्ट आ रहा था कि जी रणवीर सिंह जो है शायद अपना कुछ प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं। आज उसकी टीम ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जैसे ये इनका जो लग्जूरियस अपार्टमेंट है मुंबई के प्रभा देवी के एरिया के अंदर, वहां पे शायद ये एक स्टूडियो बना के और वहां पे कुछ हाई पोस्ट एक्शन मूवी बनाने का स्क्रिप्ट देख रहे हैं। उनके टीम ने कहा कि ये सब अनट्रू है। नेटफ्लिक्स के ऊपर जो ट्रेलर आज शो किया गया है डब्बा कार्टल का, उसका एक लॉन्च पार्टी था मुंबई के महबूब स्टूडियो में, वहां पे शबाना आजमी और बाकी तमाम कास्ट जो था वो भी था। शबाना आजमी ने आज कहा कि मैं सच एक बोलना चाहती हूं, जो इसके मेकर्स थे फरहान और शिबानी उनको मैंने कहा था कि भाई किसी और को लेकर आओ, ये क्या तुम ये ज्योतिका को लेकर आगे हो, कुछ और नहीं है तुम्हारे पास लाने को। तो इन्होंने शिबानी ने अपना शी पुट हर फुट डाउन, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप करो, हम ये कास्ट चेंज अभी नहीं करेंगे। तो शबाना आजमी ने कहा आज मैं कन्फेस करती हूं कि थैंक यू आपने शिबानी मेरा मुझे नहीं सुना है और इसी को रहने दिया, वरना इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिलता। सलमान खान में जनाब आया है नया पोस्टर उनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर से, क्योंकि आज जो उनका प्रोड्यूसर है साजिद नडीर वाला उसका आज बर्थडे था तो उसके ऊपर आज उन्होंने ये नया जो पोस्टर शो किया रिलीज किया है, उसके अंदर उसका बहुत ही सीवियर और सॉफ्ट किस्म का लुक नजर आ रहा है और हाथ के अंदर वेपन है, तो उस पर सलमान खान ने फिर से लिखा है सिकंदर ऑन ईद। पाकिस्तान के जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान हेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने कहा जी कि ये सब खबरें गलत है कि बाबर आजम थर्ड पोजीशन पे खेलेगा, नहीं बाबर के ऊपर हमारा और पीसीबी का बिल्कुल ट्रस्ट है और वो ओपन करेगा जो है वो, और कराची के अंदर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम पूरा टीम जो है यूनाइटेड है, ये भी खबर गलत है कि हम यूनाइटेड नहीं है और हम पूरा कोशिश करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को घर में लाने की। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो है जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसका जबरदस्त किस्म का जो है एयर शो रहेगा और ये सेरेमनी जो है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी। इसके अंदर जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो प्रेसिडेंट जरदारी रहेंगे। न्यूजीलैंड के टॉम लेथम ने अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर विद पाकिस्तान इन कराची आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा है कि रविंद्रा जो है उसको बहुत ही नैस्टी इंजरी आ गया है। वो हालांकि कुछ अभी इवनिंग में प्रैक्टिस करेगा, लेकिन हम देखेंगे कि वो वेल भी है, वो कर भी सकता है, हमारे साथ खेल सकता है कि नहीं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गसन जो है उसको भी फुट इंजरी आ गया था, जो मैच खेल रहे थे कराची में अफगानिस्तान के खिलाफ एक वार्म अप उसमें, तो वो भी शायद नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। आईसीसी ने आज अनवेल किया है स्टार स्टडेड कमेंट्री पैनल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में ये जो होने वाली है फ्रॉम फरवरी 19th यानी कि कल से 22 मेंबर पैनल जो है उसके अंदर तीन पाकिस्तानीज हैं, वसीम अकरम, वसीम रमीज राजा एंड बाजिद खान, और इसके अलावा इसके अंदर हैं रवि शास्त्री, सुनील गवास्कर, नासिर हुसैन, मैथ्यू हेडन, ईन बिशप, साइमन डूल, डेन स्टीन, शॉन पॉलक और आरॉन फिंच। डिसिप्लिन्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस जो दिखाया जिम्बाब्वे ने और जो इनका बेन कुरन ने जो अपना अनबीटन मेडन टन बनाया उसकी वजह से जिम्बाब्वे ने आज आयरलैंड को हराया 9 विकेट से और विन किया 3-मैच ओडीआई सीरीज भी 2-1 एट हरारे स्पोर्ट्स क्लब पे। बैटिंग फर्स्ट आयरलैंड में 240 for 650 overs, जिम्बाब्वे ने चेज किया 241 target कम्फर्टेबली विद 63 balls टू स्पेयर। एंड एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी क्यूट न्यूज, आज मुझे इतना प्यार आया, टूडो साहब ने इन्विक्टस गेम्स जो खत्म हुए हैं प्रिंस हैरी के उसके ऊपर बहुत ही प्यारा कंक्लूडिंग सेरेमनी पे अमेरिकन्स को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा मैं हम और तुम एक जैसे हैं, हमारा फ्रेंडशिप है, हम प्राउड है जब आप अपने फ्लैग के अंडर खेलते हैं और हमारा फ्यूचर भी साथ है, हमारे वैल्यूज एक है, हमारा फ्रेंडशिप जो है इट हैज एंड्योर्ड टेस्ट ऑफ टाइम और हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम चाहे हम फाइट करें या ना करें, हमारा जो दोस्ती है दोनों कंट्रीज के बीच में वो हमेशा इवन इन टफ टाइम्स जो है वो चलता रहेगा। अमेरिकन्स आर आवर फ्रेंड्स ऑलवेज एंड वी आर योर्स।
जबरदस्त हो गया जनाब, और हम बस एक कमर्शियल लेते हैं उसके बाद हमारे साथ मार्क जो हैं ऑलरेडी स्काइप पर हैं, तो हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।
मोमिन हलाल मीट एंड ग्रॉसर्स स्पेशल रमदान सेल स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 22nd। लैम्ब शोल्डर्स 799 पर पाउंड, चिकन थाइज एंड लेग्स 199 पर पाउंड एज इज, चिकन कीमा 399 पर पाउंड, अजवा खजूर 899, रू अफजा 399 और बहुत सारा ग्रोसरी का सामान वो भी सेल पर एट मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी 1010 ड्रीम क्रेसेंट इन मिसिसागा 9052861998 9052861998 मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
जी हेलो एंड वेलकम बैक, आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे एस प्रोफेसर और बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो हमारे कमेंटेटर हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स, खासतौर पे जो कनाडा और अमेरिका का जो सिस्टम सारा हमारा बीच में भी चल रहा है, ट्रेड के जो खतरे चल रहे हैं, टैरिफ्स चल रहे हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए नॉर्थ अमेरिका में हो क्या रहा है हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर मार्क मेरोविट्स। ये हैं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मैरीटाइम कॉलेज के साथ रिलेटेड। तो डॉक्टर मार्क जो हैं वो बड़े प्यारे हैं, वैसे भी बड़ी मोहब्बत से हमसे बात करते हैं, मुझे डांटते भी हैं बीच बीच में, लेकिन जो है आज हम उनसे फिर से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हेलो मार्क, हाउ आर यू?
Okay, how about you?
Yeah, very, very well. We love you, really. I was just telling my listeners that you scold me in between also, but we love you so much. You are such an expert. Okay, so my first...
The feeling is mutual.
Yes, absolutely. Okay, Dr. Mark, my first question definitely would be, what do you think after 1 month, now what is going to happen? These tariffs between Canada and US, are they going to intensify? Is Mr. Trump going to put some more tariffs? And do you see Canada, retaliating with the retaliatory tariffs? So we will start with this and then we will move to North America and Europe.
Well, look, the world is very, very fraught. I think, Trump is a game changer. We've talked about this before. Canada cannot withstand the American economy, and certainly not in its present situation. So I do think that, taking a hard line on the side of Canada against the United States is a foolish idea. And again, I'm not a Canadian, but I've spent a lot of my time, I was active in an organization in New York called the Canadian Institute of International Affairs. I was the president of the New York branch My first trips to Canada and any plane was on Canadair Canada. So I have a lot of affinity for Canada, represented as a lawyer, Canadian oil and gas companies and also other companies, investing, cross-investing. So I have a fair knowledge of it. I would say that Canada's economy cannot withstand an onslaught against the United States, especially in the present situation where you have an uncertain political future. And I think, if I may say, and you'll forgive me as an American for being hypercritical, but I think Trudeau has really mismanaged this. He's mismanaged it. You know, to get up and say, you give me a tariff, I'll give you a tariff, is not the right approach, especially when you're a weak political leader. And the one thing that Trump is very good at is identifying weakness. And he really did identify Trudeau's weakness. He's a weak leader. He shouldn't have prorogued the parliament until March. He shouldn't have left uncertainty. He should have called elections straight away and get the Canadian House in order. And I do think that's for the benefit of the United States. Look, the big issue for the United States is Mexico, not Canada. Let's be realistic. And even on the drugs and so forth, I mean, that's just not the issue. The issue is Mexico. Canada, I believe the situation will straighten itself out.
Okay. Dr. Mark, actually, the thing is that it's not only the Prime Minister. The feeling is mutual throughout the country. It means the premiers themselves also think that U.S. has, or Mr. Trump's administration has, given them a deadly blow. So it is not only the Prime Minister. And then this is one thing. And then second thing that you said, that he should have called for elections right away. He actually resigned. So he resigned, and the Liberal Party wanted a leader before they could go to elections. There are going to be early elections, most probably by March or something, although they happen in spring, in fall, but this time maybe earlier. So once they have a leader in place, they might, go for elections. Okay, this is one thing. Second thing, Dr. Mark, is that a lot of changes are taking place now in Europe with this Ukraine war talk and all of this. Europe seems to be quite upset with the approach that Mr. Trump has taken. He has excluded them. Even today they were holding a talk in Riyadh in Saudi Arabia, and they clearly said, even Marco Rubio and others, that they are going to talk directly to Russia. They are not including European Union. They are not seeking their guidance. They are not talking to Ukraine. So how come do you think this deal is going to be so successful?
I wanted to say something further to your point about Canada. I think that it was not just proroguing the parliament, and yes, they want a Liberal Party leader. I think that was very selfish of Trudeau and the Liberal Party to do that for the country. But again, I'm not Canadian, so I don't have a stake in this, and I don't have a right to be critical except as a friend. As a friend.
Yeah.
As a friend of Canada, I'm deeply disappointed. I love Canada. I love being in Canada. It's so nice there. It's beautiful there. It's much too cold in Montreal. I was so cold. I never was so cold in my life. New York is very cold now, but Montreal, oh boy, that's something unbelievable. I never really feel that. It's absolutely beautiful there. It's a beautiful country. And it's one that, as I told you, Americans love Canadians and vice versa. So that never changes. But when you deal with Trump, is not only what we're sitting on right now is a international roller coaster. And I would say that, Europe is a good example. But let's be frank about Europe. Europe is moribund. It is dysfunctional. It doesn't work. The Europeans have not done enough. They talk about a European army going in and the UK. Is this a joke? How many soldiers and naval personnel does the UK have today? The UK is a minimum size of what it was in World War II. Canadians and British, Americans, Europeans fighting in the war, yes, true, and British have been allies, Canadians and the United States, that's true. But militarily, the United States is the behemoth, is the powerful nation in the world. It's a superpower, and a democratic superpower. And these countries in Europe, France in particular, and Britain and so forth, are dysfunctional and not working and internally falling apart. I mean, this is not a surprise. You have Germany having a far-right party which Ban seems to like. Okay, I don't get that, but you know, again, it's European politics is in upheaval right now, and in terms of Ukraine, let's be real about what's going on here. Now, some people in Europe have analogized this to the Munich conference when the Chamberlain went to meet with Hitler and they decided to carve up Czechoslovakia. Essentially, Ukraine, I don't know if that's a good analogy or a bad analogy, but essentially Ukraine is not in the meeting. Europe is not in the meetings. And the superpowers, essentially Russia, U.S., are having a meeting, of all places in Saudi Arabia. Can you imagine this? I mean, who can believe this? And they're going to end the war. Because, and how are they going to end the war? Is Russia going to withdraw from Ukraine? I mean, not a chance. Not a chance. And maybe they'll just withdraw from where they are in small pieces that Ukrainians took might stay or might not. But peace at any price, or as Chamberlain said in World War II when he met with Hitler, peace in our time. We have peace in our time. Well, this is what we're talking about. So Europe is not in there because Europe is not functional. And this is very bad. I say this is very, very bad. The United States making a deal like this. Again, President Trump said when he campaigned the Ukraine war would end. He didn't say how. He said it would end. And it would never have happened had he been president. I don't know if that's true. The fact of the matter is, it looks like it's probably going to end, maybe, somehow. But then does Russia keep Crimea? Does it keep that part of Georgia that it took? Does it keep the Luhansk and Donetsk provinces? I mean, and they've lost. I heard the numbers today. I'm trying to figure them out. Maybe I don't. They already lost, maybe this year, 500,000 soldiers? Is that possible? I mean, you know, this is catastrophic, and it's replete with Russian atrocities. So from the point of view of not having a war and stopping the atrocities, that's very good. How you solve it, you don't want to solve it like Afghanistan and just end it that way and leave these people in charge and let them keep the land. And what happens going forward if Russia wants to start up a war again, if they perceive American weakness? So we're in a bad situation. We have a situation in the Middle East, too. We can talk about that, too. That one is another one. We have Syria now in flux. So the whole world is, and we're all sitting on a roller coaster, and we're holding on to the roller coaster and going for a ride. And here's the problem. We don't know where it's going.
Yeah, okay. Now that you have taken, you have just mentioned Syria, so I'm very tempted to ask you about Mr. Trump's proposal for Gaza. He says that I'm going to turn this into the Riviera of Middle East, but all the Palestinians need to leave. Now, how cruel that can be, that the people of the land, you are telling them to just, it is just like telling the Americans, get out of your country so that we rebuild it. How is he himself going to feel about it if somebody says that? So rhetoric that they are really heating up, what do you have to say about it?
I don't think, with all due respect, I don't think it's an analogy telling Americans to get out. The problem you have there, now Egypt has come up, and you see this is again Trump doing his thing. He says, Riviera of the Middle East, all the Palestinians have to leave. And then everybody says, no, no, no. And then Egypt says, I'm going to make a deal where we're going to rebuild Gaza and Palestinians can remain while we rebuild. Maybe that's what Trump had in mind. I don't know what he had in mind, but he did shake it up. Shaking up. This is what Trump does. So if he can get that done. The reason for the thinking about having everybody leave was to eliminate Hamas, take it out, take out the tunnels, release and get all the hostages out. We just had the news that the little babies who were taken with their mother were killed, and they were kidnapped alive. This is an atrocity of such a proportion that one cannot get their wrap their head around it. I mean, it's impossible to accept that human beings would behave in such a bestial and disgusting fashion. But this is who you're dealing with. So they have to be finished. Hamas must be finished, and it cannot be allowed to continue. And the Palestinian people are entitled to have a nice life. But how can they have a nice life with Hamas? They can't. So, you know, again, he shakes it up and kind of like shakes it up and sees what happens. And if Egypt comes up with this proposal to rebuild Gaza, I think that could be a good outcome. I don't know how you feel about it, but it sounds like that's a good idea, rebuilding it. But you can't rebuild it in the context where Hamas remains there in their tunnels and rebuilds and rearms and tries to do more attacks and more atrocities, and the hostages remain. That cannot be. That is not a starter for the United States, certainly. But, yeah, no, I hear your point and your criticism. I mean, it's well taken, but, you know, when he comes up with this thing, you know, people come, he says things, and then, you know, he said, you know I can only run for 2 terms, and maybe I'll run for 3 terms.
Yeah.
Okay. I want to have Gaza, the Riviera, the Middle East.
Yeah.
Okay. And I just spoke with Governor Trudeau last night. I mean, he just says, and you just have to sit there, and you just have to say to yourself, and hold on to cheer and say, well, you know, in a way, it's kind of like the expression in German, Schadenfreude. It's kind of like, I mean, like, it's so, like, you know, you cringe, but you laugh because it's effective to make, and I think why it's effective is it sort of gets us, we're talking about all this. Now, otherwise, we wouldn't be talking about it. Yeah. We talk about it, everybody's talking about it. Everybody around the world is talking about all these issues. Yeah.
So like we used to say, Hail Hitler, we are going to now say, Hail Trump.
Yes, I don't appreciate, and not that you meant it in any way, but I don't like these analogies. When we make analogies that he's a dictator and Hitler and all that, that is really something.
That's the way he's talking in the world. He says, I will take Greenland, I will take Panama Canal, I will take Gaza.
I don't agree with the analogy again to Hitler, because Hitler was a mass murderer who committed genocide, and Trump is not a committer of genocide. The thing about Panama and Greenland, okay. So let's just deal with that one, because you mentioned it. Greenland, you know, Greenland is very interesting. If you look, there is a strategic advantage. The United States has a base there. The Russians and Chinese traverse that area, and as it melts, as the Arctic melts, they get more ability to traverse that area. And a strategic danger to Canada, if I may, to mention to my friends in Canada, and to the United States. It's dangerous. Had the Russians and Chinese traversing that area. And actually, again, I don't know if we talked about this the last time we had our conversation, if they buy the isle, if they buy Greenland from the Greenlanders, from the Nuuk people, they each will get $1 million in cash for the purchase. And that's never happening, because that's not the point. The point is to make a more binding treaty with Greenland to allow the United States to have more, and I suppose Canada as well, to have more access to Greenland from a strategic point of view. As far as Panama is concerned, I watched the hearings in Congress about this, and they actually, delve into these issues to try. But Panama Canal, you might recall, the United States built it, and many, I think thousands or hundreds of workers died of malaria and other diseases building it. This is something Teddy Roosevelt wanted to do. He built it. And it's very, very important in terms of being able to traverse and not have to go all the way around when in shipping and so forth. But the Chinese are deeply embedded in Panama. Now, that was never the agreement that the United States made when they turned it back to Panama, when Jimmy Carter, in his inimitable wisdom or lack thereof, he was a great president after he left. But when he was a president, he was involved in the Iran hostage crisis and Panama Canal giving it back. If you give back the Panama Canal, you don't give it back so China can take control of the Panama Canal on both sides. The danger there is, if there ever were a tension with China, China could close the canal. So when you first, again, this schadenfreude, you kind of sit back and you say, Panama, we're going to take the Panama Canal. We're going to take it back. And everybody sits back and says, what is he talking about? But then when you look into it a little bit, and after you've laughed or cringed or whatever it is, and you look into it and you say, wait a minute, there's something to this. And that doesn't mean we're going to take back the Panama Canal, but we're going to try to, I think, the United States, to eliminate the Chinese influence there. And I think that's good for everyone in Latin America and South America.
Thank you very much, Dr. Mark. Well, in the last 40 years, U.S. has fought so many wars. China has not fought any war, zero wars. So I don't know what Chinese influence or what Chinese, scare that they have to their national security. But that was very, very nice talking to you. And we are going to connect with you now once again. This is all the time that we have today. We'll trouble you once again when we have these issues cropping up, which are, in fact, every day. So we'll connect soon. But bye for now.
I look forward to it. Thank you.
Thank you. Thank you. Bye-bye.
یعنی جناب اب اذان کی وقت ہو چکا تھا, مغرب کی اذان سن لیتے ہیں. ہمارا نمبر 416-620-1778 اور سننے کے لیے 647-872-4900.
بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں, آنکھوں سے بولتا ہوں دربار
سامع کرم. ٹورانٹو گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا, تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بنایا تا
دیدار واسطے اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے
اپنی